नमस्कार, आज हम अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी के एक बहुत ही अनोखे उद्बोधन पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है, यदि हो जाए ईश्वर के साथ साझेदारी।
जी,
ये सुनने में ही कितना दिलचस्प लगता है ना, ईश्वर के साथ साझेदारी, पार्टनरशिप। तो इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पूजा प्रार्थना तक ही है या फिर कुछ और गहरा है इसमें? चलिए समझने की कोशिश करते हैं।
हाँ बिल्कुल, ये उद्बोधन असल में हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा ये जो जीवन है इसका मूल्य क्या है और ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा हो सकता है, एक एक्टिव जिम्मेदार रिश्ता। और पूज्य गुरुदेव ने इसे समझाने के लिए, आप देखिए, एक व्यापारिक साझेदारी का मतलब एक बिजनेस पार्टनरशिप का रूपक लिया है।
हाँ, जीवन के मूल्य की बात आपने की। गुरुदेव कहते हैं कि ये मानव जीवन तो जैसे जमीन में कोई खजाना छिपा हो वैसा है।
बिल्कुल, बेशकीमती, इतना कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है।
लोग अक्सर इसे यूं ही गंवा देते हैं, घास पात जैसा समझकर।
हाँ, यही तो उनका कहना साफ है कि देखो, मनुष्य जीवन में ही कर्म करने की आजादी और उसका फल भोगने का, मतलब सुख दुख अनुभव करने का, दोनों का मौका है। दूसरे योनियों में ये नहीं है, और अगर इसका सही इस्तेमाल हो जाए ना तो मनुष्य दूसरा भगवान बन सकता है, देवत्व पा सकता है।
और अगर नहीं किया तो?
तो फिर वही कीड़े मकोड़ों की तरह बस पेट भरना और संतान पैदा करना। गुरुदेव ने इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है पेट प्रजनन। और अगर जीवन ऐसे ही बिता दिया तो मृत्यु के समय बहुत गहरा पछतावा होता है कि क्या मिला था और हमने क्या किया।
जाहिर है जीवन का ये सफर लंबा है, अकेले चलना मुश्किल भी हो सकता है, तो यहीं पर पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि उनके फरिश्ते, उनके गुरु ने उन्हें एक रास्ता सुझाया।
जी हाँ, रास्ता ये कि ईश्वर को साथी बना लो, एक सहयोगी, एक पार्टनर।
ईश्वर को पार्टनर, ये कैसे संभव है?
देखिये, यहाँ एक बहुत ही रोचक बात है। गुरुदेव ने ईश्वर की तुलना एक बैंक से की है।
बैंक से?
अच्छा। हाँ, जैसे कोई व्यापारी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बैंक से पैसा लेता है, पूंजी लेता है, वैसे ही हम अपने जीवन रूपी व्यापार के लिए ईश्वर रूपी बैंक से कृपा, शक्ति, साधन, ये सब ले सकते हैं। लेकिन जैसे बैंक लोन की शर्तें होती हैं, वैसे ही इस ईश्वरीय साझेदारी की भी शर्तें हैं। ये मुफ्त का सौदा नहीं है।
शर्तें हैं तो क्या ये जो हम सामान्य तौर पर पूजा पाठ करते हैं, माला घुमाते हैं, ये काफी नहीं है?
पूज्य गुरुदेव इसी सतही कर्मकांड की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो ऐसा है जैसे कोई लाठी से गाय के थन को बस छू दे और सोचे कि दूध मिल जाएगा।
हाँ, ये तो ठीक बात है,
इससे कुछ हासिल नहीं होता। असली साझेदारी की शर्तें अलग हैं, ज्यादा गहरी हैं।
तो क्या है वो शर्तें, विस्तार से बताएं।
देखिए, मुख्य रूप से दो शर्तें हैं। पहली ये कि ईश्वर से जो भी कृपा मिले, जो शक्ति या साधन मिले, जैसे हमारा समय है, हमारी बुद्धि है, हमारा शरीर का श्रम है, धन है
जी,
उसे उसी नेक काम में लगाना है जिसके लिए वो मिला है। उसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी हवस पूरी करने में खर्च नहीं करना। ईश्वर का दिया हुआ दान, समझ लीजिए, एक उद्देश्य के साथ आता है।
अच्छा, ये हुई पहली शर्त। और दूसरी?
दूसरी शर्त है उसे ब्याज समेत लौटाना।
ब्याज समेत? इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि ईश्वर ने जो साधन हमें दिए उनका इस्तेमाल करके हमें समाज के लिए, ईश्वर के काम के लिए पहले से ज्यादा अच्छा काम करना है, बढ़ चढ़कर योगदान देना है। जैसे बैंक अपना मूलधन और ब्याज दोनों वापस लेते हैं ना, वैसे ही ये दिव्य साझेदारी चाहती है कि हम दिए हुए से और ज्यादा अच्छाई पैदा करें।
तो इसका मतलब ये हुआ कि असली अध्यात्म सिर्फ पूजा घर में बैठकर मंत्र जपना नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
बल्कि अपने रोज के जीवन को, अपने कामों को श्रेष्ठता से जीना है, आदर्शों पर चलना है।
हाँ,
जैसे उद्बोधन में अहिल्याबाई का उदाहरण दिया है।
हाँ,
उन्होंने कितने साहस और विवेक से राज प्रजा की सेवा की। वो ईश्वर की सच्ची भागीदार थी।
उसे उसी नेक काम में लगाना है जिसके लिए वो मिला है। उसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपनी हवस पूरी करने में खर्च नहीं करना। ईश्वर का दिया हुआ दान, समझ लीजिए, एक उद्देश्य के साथ आता है।
अच्छा, ये हुई पहली शर्त।
और दूसरी?
दूसरी शर्त है उसे ब्याज समेत लौटाना।
ब्याज समेत? इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि ईश्वर ने जो साधन हमें दिए हैं उनका इस्तेमाल करके हमें समाज के लिए, ईश्वर के काम के लिए पहले से ज्यादा अच्छा काम करना है, बढ़ चढ़कर योगदान देना है। जैसे बैंक अपना मूलधन और ब्याज दोनों वापस लेता है ना, वैसे ही ये दिव्य साझेदारी चाहती है कि हम दिए हुए से और ज्यादा अच्छाई पैदा करें।
तो इसका मतलब ये हुआ कि असली अध्यात्म सिर्फ पूजा घर में बैठकर मंत्र जपना नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
बल्कि अपने रोज के जीवन को, अपने कामों को श्रेष्ठता से जीना है, आदर्शों पर चलना है।
हाँ, जैसे उद्बोधन में अहिल्याबाई का उदाहरण दिया है।
हाँ,
उन्होंने कितने साहस और विवेक से राज प्रजा की सेवा की।
हाँ,
वो ईश्वर की सच्ची भागीदार थी। तो ये सिद्धांत तो समझ आ गए, पर इसे जीवन में उतारें कैसे? कोई व्यावहारिक तरीके भी बताए हैं गुरुदेव ने?
जी हाँ, बिल्कुल बताए हैं, और बहुत ही सरल व्यावहारिक कदम है, कोई भी अपना सकता है।
जैसे कि?
पहला है घर में देव स्थापना, मतलब घर में पूजा का एक छोटा सा साफ सुथरा कोना बनाना, जहाँ परिवार के सब लोग रोज सुबह शाम थोड़ी देर बैठें, नमन करें, जप करें, ध्यान करें, कुछ अच्छा पढ़ें, स्वाध्याय करें।
इससे घर का माहौल अच्छा बनता होगा।
बिल्कुल, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। दूसरा कदम है नित्य यज्ञ।
यज्ञ? वो तो शायद मुश्किल होगा रोज करना।
नहीं नहीं, ये बहुत सरल है। चूल्हे पर जब खाना बनता है ना, तो अग्नि में रोज घी की कुछ बूंदें और अन्न के 5 ग्रास गायत्री मंत्र बोलते हुए चढ़ा देना, बस।
अच्छा, इतना ही?
हाँ, इससे भोजन प्रसाद बन जाता है और घर में यज्ञ की भावना बनी रहती है।
और तीसरा कदम?
तीसरा है विचार क्रांति में सहयोग, मतलब अच्छे विचारों का, अच्छे साहित्य का समाज में प्रसार करना। इसके लिए गुरुदेव ने ज्ञान रथ या झोला पुस्तकालय जैसे माध्यम बताए हैं। अपने समय का, मान लीजिए हफ्ते में 1-2 घंटा ही सही, इस काम में लगाना।
ज्ञान रथ मतलब एक तरह की चलती फिरती लाइब्रेरी?
हाँ, या विचारों को फैलाने वाला वाहन। और झोला पुस्तकालय मतलब थैले में कुछ अच्छी पुस्तकें रखकर लोगों तक पहुँचाना, घर घर जाकर। ये ईश्वर के ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति देने जैसा है।
ये सब करने के लिए जाहिर है ईश्वर पर बहुत गहरा विश्वास भी चाहिए होगा।
हाँ, विश्वास के बिना तो ये साझेदारी हो ही नहीं सकती, ये बुनियाद है। गुरुदेव ने वो नियाग्रा फॉल्स वाले करतबबाज टॉमस का उदाहरण दिया है ना?
हाँ, सुना है, वो रस्सी पर चलने वाला।
जी, जब उसने भीड़ से पूछा कि कौन मानता है मैं इस बच्चे को कंधे पर लेकर रस्सी पार कर लूंगा, तो सब चिल्लाए हम मानते हैं, हम मानते हैं। पर जैसे ही उसने कहा तो लाओ अपना बच्चा दो, सब पीछे हट गए, सिर्फ उस बच्चे का पिता आगे आया। क्यों? क्योंकि उसे टॉमस पर अटूट विश्वास था। बस वैसा ही विश्वास हमें ईश्वर पर रखना है। जब हम उनका काम करते हैं ना पूरे भरोसे से,
जी,
तो वो हमारी और हमसे जुड़े लोगों की जिम्मेदारी खुद उठा लेते हैं।
तो संक्षेप में कहें, ईश्वर के साथ साझेदारी का मतलब है कि ये जो अनमोल जीवन मिला है और जो भी साधन ईश्वर ने दिए हैं,
जी,
उन्हें सिर्फ अपने छोटे मोटे स्वार्थों में ना लगाकर पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ ईश्वर के काम में लगाना, मतलब समाज की भलाई में, अच्छे विचारों को फैलाने में लगाना।
बिल्कुल, ये कोई एक तरफा मांगना नहीं है, ये एक एक्टिव टू वे रिश्ता है,
जिम्मेदारी वाला।
सही कहा। और हाँ, एक बात और, उद्बोधन के अंत में गुरुदेव एक बहुत पते की बात कहते हैं।
क्या?
वो कहते हैं कि ईश्वर का अनुदान, ईश्वर की कृपा हमें तभी मिलती है जब हम अपने अंदर उसके लिए जगह बनाते हैं, मतलब खुद को खाली करते हैं।
खुद को खाली करते हैं।
हाँ, तो अब सोचने वाली बात ये है कि इस दिव्य साझेदारी को अगर हमें पूरी तरह निभाना है, तो हमें अपने जीवन से, अपने मन से किन फालतू चीजों को, किन बेकार की इच्छाओं को, आदतों को खाली करना पड़ेगा।
ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।
जी बिल्कुल, इस पर चिंतन जरूरी है।